सत्य कभी असुंदर नहीं हो सकता। सत्य शिव है, अर्थात सत्य वो है जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। दोनों शर्तें उसके साथ में जुड़ी हुई है। सत्य वो है जो कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। इसलिए सत्य के साथ जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, कल्याणकारी हो और सुंदर हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे, सत्यता में स्वाभाविकता है। इसलिए सत्य बोलना सहज है, सरल है, कल्याणकारी है, सुंदर है। झूठ बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, परंतु फिर भी हम, क्योंकि अस्वाभाविक है। शिव सुंदर है, पहला सत्य धर्म है सत्य। तो सत्य तो हमेशा मुख में रहना चाहिए, और सत्य मुख में, जो चीज मुंह में होगी वो धीरे धीरे मन में भी उतरेगी, और जो मन में आएगी वो हमेशा बुद्धि में भी आएगी। जिह्वा में आई, मन में उतरी, मन ने बुद्धि के पास दी, इस प्रकार मन बुद्धि वाणी में जो सत्य होगा तो वो निश्चित रूप से हमारे आचरण में भी आ जाएगा, व्यवहार में भी आ जाएगा। नाना पहली शर्त है सत्य, और दूसरा है दया। जीवन में दया तो होनी ही चाहिए। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं नारा। इसीलिए कहा व्यास जी ने, लिखा है अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनं द्वय। 18 वेद व्यास कहते हैं 18 पुराणों में मैंने जो बात कही है, लिखी है, वो मैं केवल दो वाक्यों में कह देता हूँ। वो दो वाक्य सिर्फ मेरे ये हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय परो उपकाराय, पुण्याय पर पापम परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई पाप नहीं है, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है। दया करनी चाहिए, दया के साथ जहाँ तक हो सके हमें दूसरे के लिए परोपकार की भावना, दूसरे का भला करने की भावना हरदम हमारे हृदय में रहनी चाहिए, और जीव मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ हृदय के अंदर एक दया का भाव होना चाहिए। दया ही मनुष्य का धर्म है नारायण। कथा आती है कि ब्रह्मा जी के पास एक बार उपदेश लेने के लिए ये तीनों ही एक साथ पहुँचे, देव, मानव और दानव। तीनों जब एक साथ पहुँचे और तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, आप हम सबको उपदेश दीजिए, आप हमको उपदेश दीजिए। द द द तीनों को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। द द द तीनों को जब एक साथ उपदेश दिया तो ब्रह्मा जी से उपदेश लेकर देवता लोग लौट गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमको जो उपदेश मिला वो समझ गए? बोले हाँ समझ गए। देवता लोग लौटे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने, उन्होंने अपने अनुकूल अर्थ निकाला, अपने अनुकूल अर्थ ये निकाला, द का अर्थ उन्होंने ये निकाला कि ब्रह्मा जी हमें कहते हैं तुम इंद्रियों के ऊपर दमन करो, इंद्रियों पर दमन करो, यही अर्थ हमारे लिए निकाला गया है, हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। और असुरों से कहा, तुमने अर्थ निकाला? और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये दर्द निकाला कि दया करनी चाहिए। उन्होंने ये अर्थ निकाल लिया, और जब मनुष्यों से पूछा कि तुमने क्या अर्थ निकाला, उन्होंने कहा, महाराज हमने ये अर्थ निकाला कि हमें दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये अर्थ हमारा निकला कि हमने यही अर्थ, इसका अर्थ समझा है कि मनुष्य संग्रही होता है, हमारे अंदर वृत्ति क्या रहती है कि जमा कर लो, इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। ईमानदारी से सोचो कि हम संग्रह में कैसे लगते हैं। जैसे एक चींटी होती ना, चींटी धीरे धीरे बड़ी उसके साथ संग्रह करती है, और उसी तरह से हम सब लोग जोड़ लो इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इकट्ठा करने, दान का अर्थ है उदार वृत्ति, अपनी वृत्ति को उदार रखना चाहिए, अर्थात जोड़ने की, इकट्ठा करने के लिए। हम बैठ करके कभी विचार करें कि जितना हमारे पास सामान हमने इकट्ठा किया हुआ है, इस सामान में कितना सामान है कि जो हमारे जीवन में उपयोग में आता है रोज, जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वो सामान कितना हमारे पास है। तो शायद मैं समझती हूँ कि बहुत थोड़ा सामान होगा जो दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उपयोग में आ रहा होगा। बाकी ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, रखते रखते आपका घर पूरा भर जाता है। और वो सामान कभी कोई मतलब नहीं, कभी कोई उसको आप व्यवहार में ला रहे हो, काम में ला रहे हो, सो कुछ नहीं है, पर एक व्रत है कि हमें जोड़ना है, इकट्ठा करना है। पर ये जोड़ने के लिए कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ रखी एक बर्तन में, यम के गण आए पकड़ ले गए, रह गई मन की मन में, जोड़ते के जोड़ते रह गए, परंतु ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। काम तो केवल राम का नाम आएगा, भगवान का नाम आएगा। इसलिए नारायण उदार वृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति के अंदर उदारता होनी चाहिए। धर्म का दूसरा पाद है दया, अर्थात दया और सोच हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए। बोले सोच माने पवित्रता, जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। बाह्य शुचि और अंतर शुचि, बाहर से की पवित्रता और भीतर की पवित्रता। जब तक ये पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी, पवित्रता आनी चाहिए। बोले पवित्रता, बाहर की पवित्रता तो स्नान से कर लोगे, पर भीतर की पवित्रता किससे होगी? अंत पवित्र कैसे होगा? जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पंडित लोग आपको सबसे पहले आपको पवित्रता कराते हैं। पवित्रता करने के लिए क्या करते हैं कि आपके हाथ में जल देते हैं, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये कह हृदकेशाय नमः, ऐसा कहकर भगवान का नाम लेकर आपको कहते हैं आचमन करो, जल पियो। भगवान के नाम से जब आपको जल दिया जाता है और उस जल का आप पान करते हैं तो आपके भीतर पवित्रता आती है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के नाम से पवित्रता है, भगवान का नाम भीतर पवित्र करता है, जल बाहर पवित्र करता है, और भगवान का नाम भीतर पवित्र करता है। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं आएगी, तब तक बाहरी पवित्रता से बात नहीं बनेगी। और जब बाहर की पवित्रता तो है, बाहर से हम नहाते तो हैं, बाहर से हम स्वच्छ वस्त्र भी पहनते हैं, परंतु याद रखना ये बाहरी पवित्रता, ये सफाई तो हो सकती है, स्वच्छता तो हो सकती है, पर पवित्रता तो भगवान के नाम से ही आ सकती है। इसलिए सोच है कि हम बाहर से भी पवित्र रहें। हम बाहर से पवित्र कहने का अभिप्राय, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, हमारा आचार और विचार पवित्र होना चाहिए। आचरण जब तक पवित्र नहीं होगा, आचरण माने चरित्र, चरित्र में पवित्रता अपनी इंद्रियों की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता और ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता, इन हाथों की पवित्रता, इन पाँव की पवित्रता, कर्मेंद्रियों की पवित्रता और ज्ञानेंद्रियों की पवित्रता। जब तक इंद्रियां सत्कर्म पराण नहीं होंगी तो इंद्रियों में पवित्रता नहीं होगी ना। और उसके साथ साथ अंतः पवित्रता है, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता और हमारे चित्त की पवित्रता, अंतस्करण की पवित्रता, ये अंतः पवित्रता है। अंतस्करण की मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी पवित्रता को ही भीतरी पवित्रता कही गई है। ये पवित्र होते हैं भगवान के स्मरण से, चित्त पवित्र होता है भगवान के चिंतन से, मन पवित्र होता है भगवान की उपासना से, बुद्धि पवित्र होती है सत्संग से, अहंकार पवित्र होता है भगवान की सेवा से। याद रखना, अहंकार की पवित्रता किसमें है? जब सेवा धर्म सेवा आ जाए, क्योंकि अहंकार जब तक सेवा नहीं होती तब तक मिटता नहीं है। इसलिए सेवा करने से हमारा अहम समर्पित होता है, अहंकार मरता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। सत्संग करने से बुद्धि पवित्र होती है, सत्संग करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का, नाम का बार बार चित्त में चिंतन करना चाहिए, इससे चित्त पवित्र होता है और मन की वासना का मल साफ होता है, धुलता है, तो वो भगवान की उपासना से होता है। ये अंतः सूची भीतर की पवित्रता है। भीतर पवित्रता इन चार चीजों से आती है, और उसके साथ साथ जो चौथा धर्म का पाद है इस कलिकाल में, वो है दान। दान करना चाहिए। दान बड़ा धर्म कहा गया है, कली का धर्म केवल दान है। दान करना अच्छी बात है, पर दान करने के लिए बुद्धि पूर्वकम ददाति दानम, दान देना चाहिए। दान का अभिप्राय, दान किसको दें, दान कैसे करें, इस बात का हमें विचार करना चाहिए। दान के लिए दान लेने वाले के अंदर पात्रता होनी चाहिए, पात्र को ही दान करना चाहिए। बोलिए पात्रता आवश्यकता से अधिक, यदि उसमें पात्रता नहीं हो, मान लो एक लोटे में एक गिलास ही पानी आता है, आप डेढ़ गिलास डाल देंगे तो बाकी का पानी इधर उधर गिरेगा। उसी तरह से जिसमें जितनी पात्रता हो, माने एक भिखारी है और वो भीख मांगता है, और भीख मांगते हुए उसे आवश्यकता है कि उसे भोजन करा दिया जाए, वो भोजन की, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में मैं कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोजन का अनाधिकारी। भोजन करने का अधिकार तो परमात्मा ने हर किसी को दे रखा है, चोर हो, चंडाल हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, जो भी हो, भोजन पर सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये भोजन के लिए अनाधिकारी है, अर्थात भोजन तक उसका अधिकार है, तो उसे भोजन अन्न खिला करके ही उसे तृप्त करना, अन्न दान ही करना उसके लिए श्रेष्ठ करो। जो जिसके जितने का अधिकारी है उसको उतना दिया जाए तो वो दान सार्थक है, और उससे अधिक दिया जाए तो वो दान सार्थक नहीं होता नारायण। इसलिए दान केवल देना है, जो जो करे सो करके नहीं, विचार पूर्वक देना चाहिए। बोले कैसे देना चाहिए? वहाँ करना चाहिए दान जहाँ आवश्यकता हो, जिसे भोजन की आवश्यकता हो उसे भोजन दें, जिसे वस्त्र की आवश्यकता हो उसे वस्त्र दें, जिसे औषधि की आवश्यकता हो उसे औषधि दें, और जिसे विद्या की आवश्यकता हो उसे विद्या दें। अर्थात जहाँ जिस चीज की आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार दान देना चाहिए। इस कलिकाल का धर्म यही है। इस प्रकार ये धर्म के चार पाद हैं, यही वृषभ है, यही बैल है, और इस बैल के ऊपर, इस धर्म के ऊपर आरूढ़ रहते हैं कौन? बोले भगवान शिव। कल्याण की प्राप्ति किससे होती है? धर्म का पालन करने से कल्याण प्राप्त होता है, धर्म का पालन करने से शिव योग मिलता है, शिव के का साक्षात्कार मिलता है, धर्म का पालन करने से। इसलिए जीवन का पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म है। पहले पुरुषार्थ का नाम ही धर्म है। धर्म का फल क्या है? भगवान के श्री चरणों में परमानुरक्ति। धर्म का फल तो मैंने जैसे आपको कहा कि धर्म का फल एक ही है, धर्म किस लिए? बोले धर्म भगवान की प्राप्ति के लिए। धर्म होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रीति। यदि धर्म करने से भगवान के चरणों में प्रीति हो रही है तो वो धर्म धर्म है। यदि धर्म करने से भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होती तो वो धर्म नहीं है, वो तो श्रम है। धर्म के लिए एक श्रम है वृषवाद, और भगवान शिव के लिए पंचाक्षर मंत्र में शिव शब्द का बड़ा भारी महत्व है। और ये जो भगवान शिव हैं, जिनके लिए शिवाय गौरी वंदना च वृषम सूर्याय, दक्ष की कथा कल आप लोगों को सुनाया था, श्री नील कंठाय, भगवान के कंठ में नीलापन है हलाहल नामक विष को लेकर, ऐसे भगवान शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ कुंभादि, वशिष्ठ कुंभो, भगवान कुंभक ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, गौतम ऋषि हैं, आदि मुनिन्द्र देवार्चित से कराया, इन देवताओं के, इन ऋषियों के द्वारा जिनकी नित्य प्रति भगवान शिव की उपासना करते हैं। वशिष्ठियों में वशिष्ठ ऋषि कुंभक ऋषि अर्थात महामुनि अगस्त जी कुंभक ऋषि कहते हैं, जिनका नाम है कुंभक, ये भगवान शिव के परम भक्त हुए हैं। इन्होंने जो भगवान शिव की अर्चना की है, इनको ऐसा बल कहाँ से प्राप्त हुआ? महामुनि अगस्त को ये सामर्थ्य कहाँ से आए कि इन्होंने अंजलि में समुद्र को, सात समुद्र को अपनी अंजलि में भर लिया, और अंजलि में भर करके सातों समुद्र के जल को पी गए हो? ऐसी ऐसी ताकत महामुनि अगस्त को कहाँ से प्राप्त हुई? बोले ये तो भगवान शिव की कृपा से ही। भगवान शिव के नाम का जप करने का प्रभाव क्या है? कोई ये पूछे तो वशिष्ठ जी को, जो ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त हुई है। वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं। ब्रह्म ऋषि अपने आप को कहलाने के लिए विश्वामित्र जी ने कितना प्रयास नहीं किया, कितना प्रयास नहीं किया, और कितना तप नहीं किया, बहुत तप किया कि मैं कैसे ही ब्रह्म ऋषि कहलाऊं। परंतु जो पदवी को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने इतना कठोर तप किया, वो ब्रह्म ऋषि की पदवी वशिष्ठ जी को सहज रूप से प्राप्त हो गई। बोले किसके प्रभाव से? ये इस शिवाक्षर मंत्र के प्रभाव से। शिव शिव कहने का जो प्रभाव है, शिव शिव कहने का जो प्रभाव है, वो वशिष्ठ जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। शिव शिव कहने का जो प्रभाव है, वो महामुनि अगस्त के जीवन में दिखाई पड़ता है। शिव शिव कहने का जो प्रभाव है, वो महामुनि गौतम के जीवन में दिखाई पड़ता है। गौतम ऋषि जिन्होंने त्रंबकेश्वर भगवान शिव को प्राप्त किया है, इन ऋषियों के जीवन में, इन मुनियों के जीवन में शिव शिव कहने का क्या फल है, ये देखना हो तो प्रत्यक्ष इनके जीवन से देखिए, इनके जीवन के चरित्र को सुनिए, पढ़िए, तो इस पर विचार करें तो आपको शिव कहने का फल प्राप्त होगा। केवल शिव शिव भगवान शंकर के नाम मात्र लेने से, शिव शिव रटमना, केवल शिव शिव का रटन करने से इनको ये फल प्राप्त हुआ। वशिष्ठ ऋषि की बात कर रहे थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों ही वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि हैं, और विश्वामित्र चाहते हैं कि मैं भी वशिष्ठ के समान महान बनूं। बोले इस महानता को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तब करना होगा। विश्वामित्र क्षत्रिय है और वो राजर्षि है, राजा है, और राजा से तप करके वो ऋषि की पदवी को प्राप्त कर गए। राजा से तप किया, बोले क्या तप किया उन्होंने? गायत्री का जप किया, भगवती गायत्री का साक्षात्कार किया और गायत्री के प्रभाव से सर्वप्रथम इस सृष्टि में गायत्री को, यदि गायत्री मंत्र को, गायत्री देवी को सर्वप्रथम यदि किसी ने प्रसन्न किया तो वो ऋषि हैं केवल विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने गायत्री को प्रसन्न किया और गायत्री के जप से उन्होंने एक नई सृष्टि का सृजन करना आरंभ कर दिया था। कथा आती है कि हरिश्चंद्र के पिताजी सत्यव्रत जब चाहते थे कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊं, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मुझे ये शरीर छोड़ना न पड़े। विश्वामित्र तपस्या करके वापस लौट रहे, उन्होंने पूछा अपनी पत्नी और पुत्र से, जब मैं तप करने गया था तब तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होता था? उन्होंने कहा कि पतिदेव, जब आप तप करने के लिए गए हुए थे तब हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए सत्यव्रत हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो राजा से पूछा कि राजन, तुमने मेरी पति पत्नी पुत्र आदि की सेवा की रक्षा किया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय कर करूं? मुनिवर, यदि आप प्रसन्न होकर मेरा कुछ हित करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मुझे सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपने तप के बल के प्रभाव से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजेंगे। स्वर्ग की ओर भेज दिया, ऊपर जा रहे सत्यव्रत स्वर्ग की ओर। स्वर्गादि में ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि ये शरीर स्वर्ग आ रहे हैं। ब्रह्मा ने सोचा कि मेरी व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाएगी। ब्रह्मादि देवताओं ने स्वर्ग से सत्यव्रत को नीचे की ओर धकेला और नीचे से विश्वामित्र ने अपने तप से ऊपर की ओर धकेला तो अधर में जाकर लटक गए, तो इसलिए उनका नाम त्रिशंकु भी हो गया। जब अधर में जाकर लड़े, कहा गुरुदेव मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल रहा है, तो कहा चिंता मत करो। विधि को ललकार देते हुए विश्वामित्र ने कहा, यदि आप अपने स्वर्ग में इन्हें स्थान नहीं देंगे तो मैं नए स्वर्ग की रचना करूँ। और नए स्वर्ग की रचना करने का संकल्प लेकर विश्वामित्र ने नए स्वर्ग की सृष्टि आरंभ कर दी, जिसमें उन्होंने सुंदर सुंदर से वन आरंभ कर दिए और जिनमें सुंदर से फलादि उत्पन्न कर दिए, नारियल फल, ये जो सब अन्नादि तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, फलादि ये आदि जो है, फल नारियल ये आदि आदि जो सृष्टि है, ये सब विश्वामित्र की अपनी सृष्टि है। विश्वामित्र की सृष्टि में ये नाना प्रकार के रसाल फूल फल आदि विश्वामित्र जी ने अपनी सृष्टि में आरंभ कर दिया। लगा ब्रह्मा जी को कि सचमुच विश्वामित्र नई सृष्टि को रच डालेंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें सत्यव्रत को आगे स्वर्ग में स्थान देना पड़ा। नारायण, तो कहने का अभिप्राय था कि तप का बल इतना था विश्वामित्र के पास, वो विश्वामित्र चाहते हैं कि मैं ब्रह्म ऋषि बनूं। जब ब्रह्म ऋषि कब होंगे? वो जब स्वयं वशिष्ठ अपने मुंह से एक बार संबोधित कर दें, ब्रह्म ऋषि कह दें, तो वो ब्रह्म ऋषि माने जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि वशिष्ठ ने अपने मुंह से कभी विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। विश्वामित्र चाहते हैं कि ये बोले और विश्वामित्र वशिष्ठ से ब्रह्म ऋषि बुलवाने के लिए उनके बहुत बहुत सारे शिष्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उन्हें समाप्त कर दिया। ज्यादा से ज्यादा जितनी हानि होती थी वो हानि सारी पहुंचाई गई वशिष्ठ को, परंतु वशिष्ठ ऋषि किसी भी दुख से, किसी भी हानि से व्यथित होकर के उन्होंने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि शब्द से संबोधित नहीं किया। एक दिन की घटना थी, विश्वामित्र ने सोचा कि आज मैं वशिष्ठ को ही समाप्त कर डालूंगा, जब वशिष्ठ ही नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। इस प्रकार रात्रि के समय में एक तलवार हाथ में लेकर, चांदनी रात थी, आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था और एक वृक्ष में जाकर छुप गए। उन्हीं की कुटिया के आंगन में लगा हुआ एक वृक्ष जिसमें जाकर विश्वामित्र छुप कर बैठे हुए हैं, अवसर पाकर अपने शस्त्र से आघात करके वशिष्ठ जी को समाप्त कर देंगे। और इधर वशिष्ठ माता अरुंधति को साथ में लिए हुए और अपने शिष्यों के मंडल में बैठे हुए थे, शिष्य मंडली में बैठे हुए थे। चंद्रमा की ओर देखते हुए माता अरुंधति कहने लगी, भगवान आज तो पूर्ण चंद्र आकाश में उदित ऐसे हैं, इतने सुंदर शोभा पा रहे हैं, ये चांद धवल चांदनी का प्रकाश इस पृथ्वी पर ऐसा फैला हुआ है जैसे मानो संसार में विश्वामित्र के तप का प्रभाव फैला हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ अरुंधति, ये आज का चंद्रमा तो बहुत सुंदर है, कितने उज्जवल धवल अपनी शीत ज्योतिषना से सारी सृष्टि को आनंद दे रहा है, जैसा संसार में विश्वामित्र का तप सबको आनंदित दे रहा है। विश्वामित्र जी सोचने लगे, जिस व्यक्ति को मैं हमेशा अपना शत्रु ठहराता रहा, जिसे मैं अपना शत्रु समझ रहा था, वो मेरा इतना बड़ा प्रशंसक है, जिस व्यक्ति के मैंने 100 पुत्र मार दिए उसके मन में रंच मात्र भी मेरे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बस विश्वामित्र पेड़ से उतरे और आकर मुनिवर के चरणों में, वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करने लगे। जैसे विश्वामित्र के चरणों, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, विश्वामित्र को अपने अंक में भरा और कहा, आओ ब्रह्म ऋषि। अब तो और असमंजस में थे, ये शब्द सुनने के लिए मैंने आपका कितना अपकार किया परंतु आपके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकला, पर आज आपके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, ब्रह्म ऋषि। ये शब्द यदि आप पहले बोल दिए होते, ये संबोधन पहले दे दिए होते तो मैं आपका इतना अपकार नहीं करता, इतनी आपको हानि नहीं पहुंचाता। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मुनिवर आज तक आपकी बुद्धि में शस्त्र बल को महत्व था, आप हमेशा शस्त्र को ही बल समझकर चलते थे, शस्त्र बल को ही महान मानते थे। जब तक आपकी बुद्धि में शस्त्र के बल की महानता थी तब तक आप राजर्षि कहलाने के योग्य थे, आज आपने उस शस्त्र बल की महानता को छोड़ करके ब्रह्म बल को महान माना है, तो इसलिए ब्रह्म बल को महान मानने के कारण आज आप ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य है। अर्थात ब्रह्म ऋषि कौन, अर्थात ब्रह्म को महान मानने वाला कौन, बोले ब्रह्म बल क्या है, अर्थात विशुद्ध ज्ञान का बल है, ज्ञान के बल को ही वास्तव में बल समझा है, तो इसलिए आप ब्रह्म ऋषि कहलाने के योग्य हो गए हैं। तो ये ब्रह्म बल की महानता कैसे समझ में, वशिष्ठ जी को ये ब्रह्म बल कैसे समझ में आया, जो विश्वामित्र को तप से समझ में नहीं आया, ये बल समझा उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, वो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी के अंदर इतना अपकार करने वाले विश्वामित्र के मन के प्रति कोई मन में द्वेष भाव नहीं है। उनका हृदय द्वेष से रहित है, उज्जवल है। बोले क्यों? क्योंकि ये शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ही जप का प्रभाव तो है। जप के प्रभाव से आपके हृदय का द्वेष समाप्त तो होगा, माने अज्ञान समाप्त तो होगा, ज्ञान का सूर्य उदय होगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी, अर्थात स्वस्वरूप आत्म ज्योति की प्राप्ति होगी। ऐसा दिव्य नाम ये शिव नाम है, इसलिए निरंतर कहें भज मना शिव मेवा निरंतर, भज मना शिव मेवनी, जप मना शिव मेवनी अंतरम, जप मना भज मना शिव मेवनी अंतरम, भज मना शिव मेव निरंतरम, रट मना शिव मेव निरंतरम, रट मना शिव मेव निरंतरम, भज मना शिव मेव निरंतरम, भज मना शिव मेव निरंतरम, शिव शिवेति 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 वा, शिव शिवेति 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 वा, भज भजेति भवेति भवेति वा, भव भवेति 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 वा, मृण मृणेति 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 वा, मृण मृणेति 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 वा, भज मना शिव मेव निरंतरम, भज मना शिव मेव निरंतरम। बोलो शंकर भगवान की।